ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ
30th January 1968।
द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन।
रूहानी बाप कौन है?
Who is the spiritual father?
Jismani baap kaun hai?
And who is the bodily father?
Ruhani baap. Ruho ka baap.
The spiritual father means the father of souls.
Aur jismani baap mana manushya matra ka baap.
And the bodily father means the father of human beings.
रूहानी बाप मनुष्य मात्र के बाप में बैठ।
सो स्पिरिचुअल फादर सिट्स इन द फादर ऑफ ह्यूमन बींग्स।
रूहानी बच्चों को समझाते
एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन।
मनुष्य देह अभिमानी होते हैं।
ह्यूमन बींग्स आर बॉडी कॉन्शियस।
देह अभिमानी मनुष्यों को नहीं समझाते।
ही डजंट एक्सप्लेन टू बॉडी कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स।
जो बच्चे आत्मा अभिमानी की स्टेज में बैठे हैं उनको समझाते।
ही एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन हु हैव सैट इन सोल कॉन्शियस स्टेज।
तो बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है।
सो एट फर्स्ट द चिल्ड्रन हैव गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर।
छोटा बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले उनको माँ बाप का परिचय मिलता है।
व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड टेक्स बर्थ It first gets the introduction of its parents.
तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ संसार है।
Even amongst you, there are number wise ones according to their effort.
जिनको रचयिता बाप का परिचय मिला है।
Who got the introduction of the creator father?
इसको कहें रचयिता बाप।
Who should we call as the creator father?
बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप रूहानी बाप को रचयिता बाप कहें।
Should we call the father of the point-like souls, the spiritual father, as the creator father?
Ya koi aur personality hai?
Or is it some other personality?
Rachayata baap kisko kahe?
Whom should we call the creator father?
Bindu bindu atma hai to anadi avinashi hai.
The point-like souls are eternal, imperishable.
उनके रचे जाने का सवाल ही नहीं।
There is no question of creating them at all.
और आत्माओं का बाप जो रूहानी बाप है वो भी नहीं रचा जाता।
And the father of souls, the spiritual father, even he is not created.
वो भी अनादि अविनाशी है।
He is also eternal and imperishable.
तो रूहानी बाप न रचयिता है।
So the spiritual father is neither a creator.
और न रूहानी बच्चों की रचना करता है।
Nor does he create the spiritual children.
सिर्फ आकर के रूह का ज्ञान देता है।
He only comes and gives the knowledge of soul.
तो बच्चों को पता चलता है कि हम रूह हैं।
So the children come to know that they are souls.
बाकी ऐसे नहीं है कि रूह पहले थी नहीं।
Nevertheless, it is not like this. That the soul was not there at first.
ये भी बच्चे जानते हैं।
The children know this too.
ऊंचे ते ऊंचे बाप ही।
The father alone is the highest on high.
और उनकी ही महिमा बतानी होती है।
And one has to say only his praise.
ऊंचे ते ऊंचे और महिमावंत।
The highest on high and the praiseworthy, महिमावंत।
साकार दुनिया में होता है या निराकारी दुनिया में होता है?
Does this happen in the corporeal world or in the incorporeal world?
साकार दुनिया में ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीच का सवाल है।
The question of highest on high and the lowest of low arises in the corporeal world.
महिमा भी ऊंचे से ऊंचे की तब है जब एक साकारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाता है।
There is a praise of the highest on high when he performs the highest on high role in this corporeal world.
Mahima gaate bhi hai Om Shivaya Namah.
People also praise Om Shivaya Namah. That is, I, a soul, bow to Shiv.
Shiv ke pehle Om lagate hain.
Om is prefixed to Shiv.
Shivai Namaha bhi kehte hain.
They also say Shivai Namaha, that is, I bow to Shiv.
Brahmai Namaha, Vishnuai Namaha, ye to so hota hi nahi hai.
Brahmai Namaha, that is, I bow to Brahma. Vishnuai Namaha, that is, I bow to Vishnu. This doesn't suit.
Shivai Namaha, so hota hai.
Shivai Namaha, that is, I bow to Shiv, suits.
Brahma Vishnu ke liye phir kahenge Brahma Devatai Namaha.
For Brahma and Vishnu, it will be said Brahma Devatai Namaha. That is, I bow to Brahma, a deity.
Brahma jab devata ban jaye, tab naman karte.
When Brahma becomes a deity, one bows before him.
Vishnu Devatai Namaha.
Vishnu Devatai Namaha, that is, I bow to Vishnu, a deity.
So, devata lagane se achha shobha deya, shobha man hota hai.
So, by attaching the word devata, the word becomes attractive.
Devata kehna pade.
So, one would have to say deity.
Parantu unche te unche hai Bhagwan.
But the highest on high is God.
Bhagwan mein aur devata mein fark hai.
There is a difference between God and deity.
Pradarshini aadi mein jab koi aate hai.
When someone comes to the exhibition, etc.
To pehle unche te unche baat ki mehma zarur batani hai.
First, one should certainly tell them about the glory of the highest on high Father.
Wo supreme va param baap hai.
He is the supreme Father.
Usse uncha aur koi baap nahi hota.
There is no other father higher than him.
Bacche bhool jate.
The children forget.
Us samay samjhate samay yaad nahi padta hai.
While explaining, they don't remember
ki baap ki mehma kaise sunave.
That how should they narrate the glory of the father.
Pehle to ye samjhana.
First, explain that
wo supreme baap bhi hai.
He is the supreme father.
Teacher bhi hai aur guru bhi.
Teacher and guru as well.
Ek hi hai.
He is the only one
jo baap ke roop mein bhi part bajata hai.
Who performs a role in the form of the father as well.
Gyan ka bija ropan karta hai.
He sows the seed of knowledge.
Ant mein barsa deta hai.
And gives inheritance at last.
Beech mein teacher bhi hai.
He is also the teacher in between.
Aur ant mein guru ka part bhi bajata hai.
And performs the role of guru at last.
To teeno ko yaad karna pade.
So one will have to remember all the three.
Baap ko yaad karenge.
If one remembers the father,
to baap ke sambandh se sukh shanti ka varsha milega.
Then one will get inheritance of joy and peace through the relation of the father.
Teacher ko yaad karenge.
If one remembers the teacher,
to ek ek baat ki gehrai milegi.
Then one will get the depth of each and every matter.
Aur guru ko yaad karenge to sadgati milegi.
And if one remembers the guru, then one will get the true salvation.
Yaad to Shiv Baba ko hi karna hai.
One has to remember Shiv Baba alone.
Aur teenon roopon mein yaad karna hai.
Moreover, one has to remember in all the three forms.
Ye to pakka karna pade.
One has to make this firm.
Chahe baap ho, chahe teacher ho, chahe sadguru ho.
Whether as a father, whether as a teacher, whether as a Sadguru.
Teeno hi roop mein paathdhari Shiv Baba hai.
Shiv Baba is the actor in all the three forms.
So pehle baap ki mehma karni.
So first one has to praise the father.
Jaroor tum jante ho tab to mehma karte ho.
Certainly you know, only then you praise the father.
Aise unche te unche Bhagwan ko phir thikkar bhittar mein thonk dete hain.
Then they consider such a highest on high God to be in mud and wall.
Aisi atmaye.
So such souls
jo thikkar arthat mitti ke dhele ki tarah hai.
Who are like thikkar, that is a lump of mud.
Thodi si maya ki thokar lage aur toot jaye. Bikhar jaye.
Who will break away? Who will disperse if they get a little kick from maya?
Unme bhagwan ko vyapak samajh lete.
God is considered to be pervasive in them.
Gyan marg mein vittar arthat beet ki tarah diwal ki tarah vighna ban karke baith jaye. Khadi ho jaye.
Those who sit or stand as an obstacle like a beet, that is a wall in the path of knowledge.
Aiso mein bhagwan ko samajh lete hain.
God is considered to be present in such ones.
Manushya mein kahe to bhi theek.
If he is said to be in a human being, even then it is all right.
Manushya to phir bhi manu ki aulad kaha jata hai.
A human being is called as the progeny of manu.
Manan chintan manthan karne wale ko manushya kaha jata hai.
The one who does thinking and churning is called as a human being.
ऐसे तो मनुष्य मात्र में भी नहीं कह सकते.
In a way, one cannot say God is in human beings too.
कोई एक मनुष्य तन में भी सदैव तो रहते नहीं है.
He doesn't remain in one particular human body always.
वो तो जरूर लोन लेते हैं.
He certainly takes loan.
कोई भी आत्मा किसके शरीर का आधार नहीं लेती है.
Any soul doesn't take the support of anyone else's body.
He khud kehte hai main inka aadhar leta hu.
He himself says, I take their support.
To pehle pehle mukhya baat pakki karani.
So at first, one has to be made firm on the main issue.
Jis unche se unche baap ki hum mehma karte hain.
The highest on high father whom we praise.
Wo sachcha baap hai.
Is a true father.
Truth Godfather kaha jata hai.
He is called as a truth Godfather.
Wohi hame Satyanarayan ki sachi katha sunate hai.
He himself narrates to us the true story of Satyanarayan.
Aur Narase Narayan truth baap hi banate hai.
And the truth father alone makes us Narayan from Nar.
In Lakshmi Narayan ka raati tha na.
The kingdom of this Lakshmi Narayan was there, wasn't it?
Jarur inka raati satyug mein tha.
Certainly, their kingdom was in the golden age.
Wo Satyanarayan kaise bane?
How did he become Satyanarayan?
Sari duniya jhooti ho jati hai.
The entire world becomes false.
Manushya matra jhoote ho jate hain.
All the human beings become false.
Jhooto ki duniya mein ek Satyanarayan ki katha gai jati hai.
The story of one Satyanarayan is sung in the world of false people.
To aise satya kaise bane?
So how did he become such a truthful one?
इनको ऐसा सच्चा कब बनाया? किसने बनाया?
When was he made truthful like that? Who made him?
और ये सत्यनारायण की सच्ची कथा कब सुनाई?
And when was this true story of सत्यनारायण narrated?
नरको नारायण बनने के लिए राजयोग कब सिखाया?
When did he teach the राजयोग for becoming नारायण from नर?
ये सब बातें तुम अभी समझते हो.
Now you understand all these things.
और सभी का योग होता है मनुष्य मनुष्यों के साथ.
All other human beings have connection with human beings.
ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ.
It doesn't happen so that the connection of a human being is with an incorporeal one.
और वो भी निराकार सिर्फ कहने मात्र नहीं.
And even that incorporeal one is not just for the sake of saying.
Samajh ke saath.
But with an understanding.
Ki nirakar kya?
Of what the incorporeal is.
Aur sakar kya?
And what the corporeal is.
Nirakari kya?
What the incorporeal one is.
Nirakari kaise nirvikari nirahankari hota hai?
How the one who is incorporeal becomes without vices, egoless?
साकार में होते हुए निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होता है.
Does he become incorporeal without vices and egoless when he is in the corporeal form?
यह बिना साकार के ये कहने हैं.
Or is there this place without the corporeal?
वो भी समझ चाहिए.
So one should have a knowledge about that too.
आजकल तो बल शिव के साथ योग लगाते हैं.
Even though nowadays they establish a connection with Shiv.
पूजा करते हैं.
They worship him.
परंतु जिस शिव की पूजा करते हैं उनको जानते कोई भी नहीं.
But they don't know that Shiv whom they worship.
समझते कुछ भी नहीं.
They don't understand anything at all.
बस मंदिर में पत्थर का लिंग बना के रख दिया है.
They have just placed a ling made up of stone in the temple. That is all.
उसमें बिंदी लगाए देते हैं. पूजा करते रहते हैं.
They apply a dot on that and keep worshipping.
ये नहीं जानते.
They don't know.
ये पत्थर का लिंग कलयुग में क्यों बैठ बनाया है?
Why this ling of stone has been made in the Iron Age?
शास्त्रों में,
in scriptures,
स्वर्णलिंग की भी बात आई है.
The matter of a golden ling has been mentioned.
रजत लिंग भी है.
A silver ling is also mentioned.
ताम्र लिंग भी गाया हुआ है.
A copper ling is famous as well.
और लो एक पत्थर का भी लिंग लगाई दिए.
And a ling of iron and stone is also kept.
परंतु इसका अर्थ क्या है?
But what does it mean?
क्या शिव इन चार अवस्थाओं से पसार होता है?
Does Shiv pass through these four stages?
शिव सुप्रीम सोल चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता.
The supreme soul Shiv doesn't pass through the four stages.
वो तो सदा शिव है.
He is ever benevolent.
परंतु इस चोले में प्रवेश करता है मुकर्र रूप से.
But the body in which he enters in a permanent form.
वो सारे कल्प में चार अवस्थाओं से पसार होता है.
That passes through four stages in the entire kalp, that is cycle of 5000 years.
वो आत्मा भी संग के रंग में आती है.
It is because that soul is colored by the company as well.
ये भी समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर साकारी सृष्टि पर ही होगा.
They also understand that Prajapita Brahma will certainly be present in this corporeal world.
ऐसे तो हो नहीं सकता.
It is not possible.
कि साकारी सृष्टि में प्रजापिता ब्रह्मा न हो और प्रजा हो.
That Prajapita Brahma is not there in the corporeal world and subjects are there.
जहाँ 500-700 करोड़ प्रजा होगी.
Wherever the 5 to 7 billion subjects exist.
और जब तक वो प्रजा होगी.
And until the subjects exist.
तब तक प्रजापिता भी सृष्टि पर जरूर मौजूद रहेगा.
Prajapita will certainly be present in this corporeal world.
मुझे हुए हैं.
They are confused.
समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए.
They think that first Prajapita Brahma should be in the golden age.
अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो.
If Prajapita Brahma were in the golden age.
तो फिर सूक्ष्म बतन क्यों दिखाया है?
Then why has the subtle world been shown?
अर्थ ही नहीं समझते.
They don't understand the meaning at all.
वो प्रजापिता भी है कर्म बंधन में.
That Prajapita is also in the bondage of karma. That is कर्म बंधन.
किसके साथ कर्मों का बंधन है?
With whom is the bondage of karma?
बोला तो ये है कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं.
It has been said that if बाप दादा want to, they can go back.
तो वापस जाने वाले का कर्म बंधन हो सकता है क्या?
सो कैन द वन हु गोज बैक हैव बॉन्डेज ऑफ कर्म?
देन
समवन सेड ही हैज स्टॉप्ड फॉर द चिल्ड्रन.
बाप है?
ही इज अ फादर.
तो बाप बच्चों का कल्याण किए बगैर वापस नहीं जा सकता.
सो अ फादर कैन नॉट गो बैक विदाउट डूइंग बेनिफिट टू द चिल्ड्रन.
वो कर्म बंधन में है.
ही इज इन बॉन्डेज ऑफ कर्म.
तो जरूर बच्चों के साथ कोई कर्मों का बंधन है.
देन सर्टेनली ही हैज सम बॉन्डेज ऑफ कर्म विद द चिल्ड्रन.
बच्चों का भी कर्मों का बंधन रहेगा.
Someone said the children will also have bondage of karma. Won't they?
बच्चों का तो पहले होगा.
The children will indeed have first.
बच्चों को छोड़ करके बाप नहीं जा सकता.
The father cannot go leaving the children.
एक ही पर्सनालिटी में दो बाप बैठे हुए.
Two fathers are sitting in only one personality.
एक है आत्माओं का बाप.
One is the father of souls.
और दूसरा है मनुष्य मात्र का बाप.
And another is the father of all human beings.
वो सदैव कर्मातीत है.
He is always कर्मातीत. That is beyond the effect of actions.
कौन?
Who?
रूहानी बाप सदैव कर्मों से अतीत है.
The spiritual father is always beyond karma.
कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे रहता है.
He remains detached from the bondage of karma even while he performs karma through the bodily organs.
और वो ही ज्ञान देने वाला है.
And he is himself the giver of the knowledge.
एक ही बाप है जो ज्ञान देने वाला है.
There is only one father who gives the knowledge.
बेहद के बाप तो दो हैं.
There are two unlimited fathers.
परंतु ज्ञान देने वाला एक ही बाप रूहानी है.
But the giver of knowledge is only one spiritual father.
वो आकर के तुमको ज्ञान देवे.
When he comes and gives you the knowledge,
तब तुम दूसरों को सुनाओ.
Then narrate it to the others.
कौन आकर के?
Who comes?
रूहानी बाप आकर के ज्ञान देवे.
When the spiritual father comes and gives you the knowledge,
तब दूसरों को सुनाओ.
Then narrate it to the others.
कौन सुनावे?
Who should narrate?
अरे बच्चों में भी कौन बच्चा जो सुनावे?
अरे इवन अमंगस्ट द चिल्ड्रन हु इज द चाइल्ड हु शुड नरेट?
आने वाला है रूहानी बाप.
द स्पिरिचुअल फादर इज द वन हु कम्स.
रूहानी दुनिया से आता है.
ही कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड.
आकर के पहले तुमको ज्ञान दे.
ही कम्स एंड गिव्स द नॉलेज टू यू फर्स्ट.
तुमको जब कहा 68 की वाणी में.
When it was said in the Vani of 68 to you.
तो 68 में वो तुम सामने मौजूद था क्या?
So was that you present before the father in 68?
मौजूद नहीं था लेकिन इमर्ज करके बोला.
He was not present but Baba said it by emerging him.
तुमको ज्ञान देवे तब तुम दूसरों को सुनाओ.
When I give you the knowledge then narrate it to the others.
ज्ञान है ही नहीं.
If one doesn't have the knowledge,
तो दूसरों को सुनावेंगे कैसे?
Then how can one narrate it to the others?
बाप का परिचय देना है.
You have to give the introduction of the father.
है तो बहुत से है.
It is very easy.
और अलफ पर ही समझाना है.
And you should explain just on alaf.
क्या? जैसे बेसिक नॉलेज में.
जस्ट लाइक इन द बेसिक नॉलेज.
32 किरणों वाला चित्र बनाई दिया.
द पिक्चर ऑफ 32 रेज हैज बीन प्रिपेयर्ड.
और बीच में ज्योति बिंदु निराकार का चित्र रख दिया.
एंड द पिक्चर ऑफ इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट हैज बीन केप्ट इन द मिडिल ऑफ दैट.
तो उस पर समझाने से कोई 32 गुणों की बात को समझेगा?
इफ समवन एक्सप्लेन्ड ऑन इट देन विल एनीवन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ 32 वर्च्यूज.
कि निराकार के 32 गुण होते हैं.
That the incorporeal one has 32 virtues.
कोई नहीं समझेगा.
Nobody will understand it.
इसलिए अलफ पर समझाना है.
That is why one should explain on अलफ.
एक होता है बिंदु.
One is a point.
इसे कहते हैं उर्दू में नुक्ता.
Which is called as नुक्ता in उर्दू.
फिर होता है अलफ.
Then there is an अलफ.
खड़ा डंडा.
The vertical stick.
और फिर होता है नंबर दो में पड़ा डंडा बे.
एंड देन इन द सेकंड नंबर देयर इज अ हॉरिजॉन्टल स्टिक बे.
तो अलग पर समझाना है. ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है.
सो वन शुड एक्सप्लेन ऑन अलव. दिस इज द अनलिमिटेड फादर ऑफ ऑल द सोल्स.
इसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है.
There is no difficulty in giving the introduction to someone.
बहुत सिंपल है.
It is very simple.
परंतु समझाने वाले को अगर खुद ही निश्चय नहीं है.
But if the one who is explaining himself doesn't have faith,
तो किसी को भी समझाए नहीं सकते हैं.
Then he cannot explain to anyone.
समझाने वाला कब समझाए सकेगा?
When can the one who explains explain?
जब उसको खुद निश्चय हो. जितना तरह निश्चय से दूसरों को समझावेंगे.
When he himself has faith, the more firm the faith with which one explains,
उतना दूसरों की बुद्धि में जल्दी बैठेगा.
The faster it will sit in others' intellect.
जैसे अज्ञानी मनुष्य है.
For example, there are the ignorant human beings.
वैसे जो अनिश्चय बुद्धि है वो बैठ किसी को समझावेंगे तो वो भी अज्ञानियों की लाइन में आ जाते हैं.
सिमिलरली इफ द वन हु हैज अ फेथलेस इंटेलेक्ट सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू समवन देन दे टू विल कम इन द लिस्ट ऑफ इग्नोरेंट पीपल.
खुद निश्चय नहीं है.
इफ वन डजंट हैव द फेथ वनसेल्फ
और दूसरों के सामने ज्ञान बगाड़ते हैं.
एंड ही मेक्स शो ऑफ द नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स.
बाप का परिचय बैठ देने लग पड़ते हैं.
इफ ही स्टार्ट गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर
तो उनको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे.
देन विल सच वंस बी कॉल्ड एज नॉलेजेबल और इग्नोरेंट.
ज्ञान नहीं देते हैं तो गोया अज्ञानी.
इफ वन डजंट गिव द नॉलेज देन इट मीन्स दैट ही इज इग्नोरेंट.
ज्ञान होगा ही देही अभिमानी.
The one who is soul conscious will have the knowledge.
अगर ज्ञान नहीं है तो भक्त है.
If one doesn't have the knowledge, then he is a devotee.
समझो देहाभिमानी है.
Consider that he is body conscious.
हम आत्मा है.
We are souls.
हमारा बाप परम पिता परमात्मा है.
Our father is the supreme father, supreme soul.
वो ही हमारा टीचर है, गुरु है.
He is our teacher as well as guru.
Prajapita Brahma bhi to hai na.
Prajapita Brahma is also there, isn't he?
Parantu Prajapita sukshm vatan mein kahan se aaya?
But how did Prajapita come in the subtle world?
Praja yahan hai.
The praja, subjects are here.
Is duniya mein to Prajapita bhi? Is duniya mein?
In this world. So Prajapita is also in this world.
बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन बताया.
The father has told the occupation of Prajapita Brahma too.
विष्णु का भी ऑक्यूपेशन बताया.
He has also told the occupation of Vishnu.
शंकर के लिए तो बताया है कि उनका पार्ट ही नहीं है.
It has been told for Shankar that he has no role at all.
पार्ट ही नहीं है.
If he doesn't have any role,
तो क्या समझे कि शंकर है या नहीं है?
Then what should one understand? Is there Shankar or not?
जब पार्टी नहीं है तो होकर क्या करेगा?
When there is no role, then what will he do if he is present?
कर्मेंद्रियों से.
पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है.
A role is performed थ्रू बॉडीली ऑर्गन्स.
शंकर को तो याद में बैठे हुए दिखाते.
शंकर इज शोन टू बी सिटिंग इन रिमेम्बरेंस.
तो याद तो बुद्धि की बात है.
सो रिमेम्बरेंस इज अ मैटर रिलेटेड टू द इंटेलेक्ट.
मन बुद्धि से कोई को कर्म करते हुए नहीं देखा जा सकता.
वन कैन नॉट सी एनीबॉडी परफॉर्मिंग कर्म बाय द माइंड एंड इंटेलेक्ट.
इसलिए बताया.
दैट इज व्हाई इट हैज बीन टोल्ड
कि उनका तो जैसे कोई पार्ट ही नहीं.
दैट इट इज एज इफ ही डजंट हैव एनी रोल एट ऑल.
परंतु ऐसे नहीं है कि शंकर नहीं है.
बट इट इज नॉट लाइक दिस दैट शंकर डज नॉट एग्जिस्ट.
उन भक्तों ने तो शिव के साथ शंकर को मिलाकर एक कर दिए.
Those devotees have combined Shankar with Shiv.
किसने शिव शंकर को मिला दिया?
Who combined Shiv and Shankar?
भक्तों ने क्यों मिला दिया?
Why did the devotees combine them?
ज्ञानियों ने अलग अलग करके क्यों समझा दिया?
Why did the intellectuals explain both separately?
भक्तों को तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं होता.
The devotees don't have the third eye of the knowledge.
अज्ञान के नेत्रों से वो साकार को देखते हैं या निराकार को देखते हैं?
डू दे सी द कॉर्पोरियल वन और द इनकॉर्पोरियल वन थ्रू द इग्नोरेंट आईज? समवन सेड द कॉर्पोरियल वन.
तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी बहुतों ने
डिड मेनी अमंगस्ट द सो कॉल्ड ब्रह्मा कुमार कुमारीज
साकार ब्रह्मा को देखा.
सी द कॉर्पोरियल ब्रह्मा
या निराकार शिव बाप के वर्शंस को फॉलो किया.
और डिड दे फॉलो द वर्शंस ऑफ द इनकॉर्पोरियल फादर शिव?
साकार को देखा.
दे सॉ द कॉर्पोरियल वन.
तो उनको अज्ञानी कहे या ज्ञानी कहे?
सो शुड दे बी कॉल्ड एज इग्नोरेंट और नॉलेजेबल? समवन सेड इग्नोरेंट.
साकार को देखा.
दे सॉ द कॉर्पोरियल वन
और उसमें निराकार को नहीं समझ पाया.
एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड द इनकॉर्पोरियल वन इन हिम.
तो जैसे कि अज्ञानी हो गए.
सो इट इज एज इफ दे बिकेम इग्नोरेंट.
तो भक्तों ने तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है.
सो द डिवोटीज कंबाइंड बोथ शिव एंड शंकर इनटू वन.
परंतु उन भक्तों ने शिव और ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया?
But why did those devotees not combine Shiv and Brahma into one?
Because Brahma, पुरुषार्थ की ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंचता.
It is because Brahma does not reach to such a stage of effort.
जो शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाए.
दैट ही वुड बिकम इनकॉर्पोरियल विदाउट वॉइसेस एंड ईगोलेस लाइक शिव.
सूक्ष्म शरीर का बांध भी कट जाए.
सो दैट इवन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सटल बॉडी वुड फिनिश.
शंकर के लिए तो फिर भी बाद में समझेंगे.
अबाउट शंकर दे विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन.
ये बाप समान स्टेज को पाया हुआ है.
That he has achieved the stage equal to the father.
ये समझते हैं कि शंकर विनाश करते हैं.
Then they think that Shankar performs the destruction.
ये भी बात बनाई दी है.
This has also been cooked up.
वास्तव में प्रैक्टिकल में शंकर विनाश करते हैं.
Actually, does Shankar perform the destruction in practical?
या संगार कारणी या सुर संगारणी शक्तियाँ काम करती हैं विनाश का.
और डू द शक्तिस द डिस्ट्रॉयर्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ द डेमन्स परफॉर्म द टास्क ऑफ डिस्ट्रक्शन?
ये तो शक्तियों के लिए गायन है.
दिस इज द प्रेज ऑफ द शक्तिस.
तो बातें बनाई दी है.
सो दे हैव कुक्ड अप दीज इश्यूज.
बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर की आँख बोलने से शक्ति भस्म हो जाएगी.
Nevertheless, it is not true that the world will be burnt into ashes by Shankar opening his eye.
ये तो बेहद की बात है.
This is a matter in the unlimited sense.
ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया का गायन है.
This is the praise of the confluence aged Brahmin world.
कि ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में शंकर वाली आत्मा भी पुरुषार्थी के रूप में पहले ब्राह्मण होती है.
That even the soul of Shankar is at first a Brahmin in the form of an effort maker in the confluence-aged Brahmin world.
जैसे और ब्राह्मण सब अधूरे होते हैं तो वो भी अधूरे स्टेज में होती है.
Just like the other Brahmins are incomplete, he too is in an incomplete stage.
परंतु बीज रूप स्टेज में रह करके आत्मिक स्थिति की परिपक्व अवस्था में जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है.
But when he opens the third eye of knowledge while in a seed-like stage and in a complete soul conscious stage,
तो ब्राह्मणों की पुरानी शक्ति में विघटन पैदा हो जाता है.
Then disintegration takes place in the old Brahmin world.
जैसे संक्षेत्र में हुआ.
Just like it happened in the year 76.
ज्ञान की ऐसी ज्वाला निकलती है.
Such a fire of knowledge emerges.
जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसों को जला देती है.
Which burns the ones who are like Ravan, Kumbhakaran, Meghnath.
और जो पक्के आत्मिक स्थिति वाले ब्राह्मण होते हैं उनके ऊपर सेक नहीं आता है.
And the ones who have a firm soul conscious stage do not get harmed by the heat.
तो क्या शंकर के आँख खोलने से भी नसूत है?
So, does the destruction take place by Shankar opening his eye?
वो समझते हैं बाहर की दुनिया का विनाश हो जाता है आँख खोलने से.
They think that the destruction of the outside world takes place by opening the eye.
और उनकी कोई तीसरी आँख होगी स्थूल.
And that he might be having a third physical eye.
ऐसी कोई बात नहीं.
It is not true.
ये तो ज्ञान नेत्र की बात है.
This is about the eye of knowledge.
असली ज्ञान जब बुद्धि में बैठता है.
When the true knowledge sits in the intellect.
तो आसुरी संस्कारों का आसुरी वातावरण का विनाश होता है.
The destruction of demoniac संस्कार and the demoniac atmosphere takes place.
ऐसे नहीं.
It is not true.
कि उनकी आँख खोलने से शक्ति भस्म हो जाती है.
That when he opens the eye, the world gets burnt into ashes.
ये तो बॉम्ब्स हैं.
These are bombs.
Natural calamities होती हैं.
Natural calamities take place.
बॉम्ब फूटते हैं.
The bombs blast.
तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है.
And the earth becomes imbalanced.
Balance बिगड़ता है.
When the balance is disturbed,
तो बड़े भारी भारी भूकंप आते हैं.
Massive earthquakes occur.
ज्वालामुखी फटते हैं.
Volcanoes erupt.
और पृथ्वी ज्वलायमान होने से दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी.
And because the earth shakes, the biggest population of the world,
जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में रहती है वो सब दब के मर जाते
हैं. Which lives in the multi-story buildings, they all get buried and die.
तो देखो.
So, see.
शंकर को पतित बनाई दिए.
शंकर has been made sinful.
विनाश का काम छीछी काम है या अच्छा काम है?
Is the task of destruction dirty or good? Someone said it is a good task. Is it a good task?
विनाश होगा तो कितना हाय 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 दैया तोबा मचावेंगे. कितने दुखी होंगे.
When the destruction takes place, they will shout so much cries of despair. They will become so sorrowful. Someone said the sinful karma of everyone gets burned into ashes due to it.
जैसे कोई राजा होता है.
For example, there is some king.
चोर डकैत हत्यारे को दंड देता है.
He gives punishment to a thief, robber, murderer.
परंतु उसको मृत्यु दंड चांडाल देता है या राजा देता है? प्रैक्टिकल में कौन देता है?
But practically, who gives him the punishment of death? The cremator or the king?
Chandal deta hai.
The the cremator gives.
Raja ne to sirf nyay kiya.
The king has only given the judgment.
Ki doodh ka doodh hona chahiye aur pani ka pani hona chahiye.
So that the good should be distinguished from the bad.
Chanda mrityu dand deta hai.
The cremator gives the punishment of death.
Aise.
Similarly,
jo prakriti hai.
The one who is prakriti.
Nature hai.
That is nature.
वो जब अति तामसी बन जाती है.
When she becomes very much degraded.
तो सारी दुनिया का विनाश कराने के लिए निमित्त बन जाती है.
Then she becomes instrumental in causing the destruction of the entire world.
अगर शंकर विनाश करा दे.
If Shankar performs destruction.
तो फिर शंकर जैसे आसुरी संप्रदाय हो जाए.
Then as if Shankar will belong to the demoniac community.
विनाश प्योरिटी से होता है.
Does the destruction take place due to purity?
या इम्प्योरिटी से होता है.
और ड्यू टू इम्प्योरिटी.
इम्प्योरिटी से विनाश होता है.
द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू इम्प्योरिटी.
शंकर को अपवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे.
विल शंकर बी कॉल्ड एज इम्प्योर और प्योर.
ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म बदलवासी देवत्व फरिश्ता दिखाया हुआ है.
ब्रह्मा विष्णु शंकर आर शोन एज द सटल वर्ल्ड dweller angels.
फरिश्ताएं उन्हें कहा जाता है जिनका पक्ष की दुनिया वालों से रिश्ता ही नहीं होता.
Those who don't have any relation with the people dwelling on the land are called angels.
रिश्ते जुड़े हुए होते हैं देवरानियों से तो पतित कहा जाता है.
If relations are attached with bodily beings then they are called as sinful.
रिश्ता ही टूटा हुआ नहीं है.
If there is no relation at all,
फिर याद किसको करता है.
Then whom does he remember?
एक बाप दूसरा न कोई.
One father and none else.
इस बाप को याद करता है.
The father whom he remembers,
वो तो सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है.
Is always incorporeal. Without vices and egoless.
तो शंकर आसुरी संप्रदाय कैसे हो सकता है.
So how can Shankar belong to the demoniac community?
और वो भी एक और कहते हैं देव देव महादेव.
And on one side it is said देव देव महादेव.
33 करोड़ देवताओं में बड़े देवता त्रिदेव.
त्रिदेव three deities are the biggest deities amongst the 33 crore that is 330 million deities.
और तीन देवताओं में भी बड़ा देवता महादेव.
And the superior deity amongst the three deities is महादेव.
देवताएं आसुरी संप्रदाय कैसे हो सकते.
Then how can deities belong to the demoniac community?
ये त्रिमूर्ति आदि के चित्र यथार्थ नहीं है.
These pictures of Trimurti etc. are not accurate.
इन चित्रों की तरफ इशारा किया.
Towards which pictures the hint has been given?
जो भी साक्षात्कार से त्रिमूर्ति का चित्र बनाया गया.
The picture of Trimurti which was prepared with the divine visions.
उसके लिए भी बोल दिया ये यथार्थ रीति नहीं है.
Even for that it has been said that these are not accurate.
क्योंकि तीनों ही मूर्तियों में ब्रह्मा का चेहरा दिखाया हुआ है.
It is because the face of Brahma has been shown in all the three idols.
विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में जो चेहरा दिखाया है.
The face which has been shown in the form of Vishnu and in the form of Shankar.
उसमें से मूछ हटा दी गई ब्रह्मा की.
From those the mustache of Brahma has been removed.
चेहरा वे वही है जो कहते हो.
The face is the same as it is.
त्रिमूर्ति आदि कहा ना तो चार चित्र भी ठीक नहीं है.
Someone said, Baba, it has been told Trimurti etc. It means that all the four pictures are not accurate.
चारों चित्रों में त्रिमूर्ति के चित्र.
The picture of Trimurti is in all the four pictures.
Trimurti जो है वो तो चारों ही चित्रों में समाई हुई है ना?
The one which is Trimurti is there in all the four pictures, isn't it?
तो ये तो सब आकृति के चित्र हैं.
So all these are meaningless pictures.
सब माना? ये चारों ही चित्र आकृति हैं.
What does all means? All these four pictures are meaningless.
Murti, gola, ghar, sidhi.
The Trimurti, wheel cycle, the tree, the ladder.
आकृति तो हो जाती है क्योंकि उनमें असली चित्र नहीं है त्रिमूर्ति का.
Become meaningless because there is no true picture of the Trimurti in them.
विष्णु भी सूक्ष्म पतन में देवराज वाला कैसे हो सकता है?
How can Vishnu be present with the ornaments in the subtle world?
ये सूक्ष्म बतन की तो बात ही नहीं है.
This is not the question of the subtle world at all.
विष्णु द्वारा पालना सूक्ष्म बतन में होगी.
Will the sustenance through Vishnu take place in the subtle world?
या इस साकार दुनिया में होगी.
Or in the corporeal world?
साकार दुनिया में पालना होती है.
The sustenance takes place in the corporeal world.
देवराज का अर्थ ही दूसरा है.
The meaning of the ornaments etc. is different.
ये अलंकार तो गुणों की निशानी दिखाई गई है.
These ornaments have been shown as a symbol of the virtues.
दिव्य गुणों की अलंकार है.
These are the ornaments of the divine virtues.
ऐसे समझे तो भी ठीक.
If one understands like this, even then it is all right.
नहीं तो ये भी ठीक नहीं है.
Otherwise, even that is not all right.
तुम कहेंगे ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र के इत्यादि हैं.
You will say these are the scriptures, pictures, etc. of the Bhakti Marg, path of devotion.
भक्ति मार्ग में अंधा श्रद्धा पूर्वक समझते रहते हैं.
In the path of devotion, they understand with superstition.
कि विष्णु कोई चार भुजाओं वाला व्यक्ति होता होगा.
That Vishnu must be a personality having four arms.
वहाँ तो ऐसी कोई बात हो न सके.
That is not possible there.
ये प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है.
This Prajapita Brahma is also a bodily being.
कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं.
There are so many children.
तो ये सब चित्र आदि भक्ति मार्ग की पूजा आदि के लिए.
So all these pictures etc. are for worship etc. in the path of devotion.
प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ सूक्ष्म पतन में कैसे हो सकता है?
How can Prajapita Brahma be present there in the subtle world?
बाप ने समझाया है.
The father has explained.
ये ब्रह्मा है व्यक्त.
That this Brahma is व्यक्त. That is manifest.
और वो है अव्यक्त.
But that one is अव्यक्त. That is unmanifest.
जब अव्यक्त बनते हैं.
When he becomes अव्यक्त.
वो सूक्ष्म पतन में फरिश्ता हो जाती है.
He becomes an angel in the subtle world.
30 January Shakti Vani ka dusra page.
The second page of the Vani of 30th January 1968.
Mool vachan sukshma patan hai to sahi na?
The supreme abode, the subtle world are there practically, aren't they?
Stage ki baat hai.
It is a matter of stage.
Sukshma patan mein jaate hai na?
One goes to the subtle world. Doesn't one?
तो ये चित्र आदि कोई यथार्थ स्थिति नहीं है.
So these pictures etc. are not accurate.
बाप बैठने का अर्थ समझाते.
The father sits and explains the meaning of this.
ये ब्रह्मा का अर्थ क्या है?
What the meaning of Brahma is?
शब्द होते हैं तो उनका अर्थ होता है ना?
If there are words, then they have meanings, haven't they?
काम के आधार पर नाम पड़े हुए हैं ना?
The names are given on the basis of tasks, aren't they?
तो सही है सब आप समझाते हैं.
So the father explains the true meaning.
प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य था वही फिर फरिश्ता बनता है.
प्रजापिता ब्रह्मा who was a human being himself becomes an angel afterwards.
प्रजापिता ब्रह्मा फरिश्ता बनता है.
प्रजापिता ब्रह्मा becomes an angel.
तो साकार शरीर रहता है या नहीं रहता है?
Then does the corporeal body remain or not remain?
रहता है.
it remains.
जब पास की दुनिया वालों से रिश्ता रहता है या नहीं रहता है?
Then, is there a connection with those dwelling on the land or not? He becomes an angel. So, the relation with the people dwelling on the land ends. After becoming an angel, here it is shown regarding kingship as well.
फिर ये राज्य करेंगे.
Then these will rule.
सूक्ष्म बतन के ये चित्र न हो तो भी समझने में मुश्किलात हो जाए.
If these pictures of the subtle world are not there, even then there will be a difficulty in understanding.
वास्तव में विष्णु का ये चतुर्भुज रूप भी नहीं है.
In fact, this form of Vishnu with four arms is not there as well.
चार भुजाओं का जो रूप है उसका क्लैरिफिकेशन भक्ति मार्ग वालों के पास नहीं है.
The ones who are from the path of devotion don't have the clarification of the form which has the four arms.
बाप आकर के समझाते हैं.
The father comes and explains.
भुजा माने मददगार.
Arms mean cooperatives.
कोई दायित्व रूप में मददगार बनते हैं.
Some become cooperative in a righteous form.
कोई leftist रूप में मददगार बनते हैं.
And some become cooperative in a leftist form.
तो विष्णु की चार भुजाएं.
Vishnu has four arms.
दो righteous रूप में.
Two are in the righteous form.
और दो leftist रूप में.
And two are in the leftist form.
Righteous रूप में मददगार का मतलब क्या है?
What does cooperative in the righteous form mean?
उन दो भुजाओं ने अर्थात दो मददगार रूपी आत्माओं ने.
Those two arms meaning two cooperative souls.
कभी किसी के अवगुणों का दर्शन नहीं किया.
Never looked at the bad qualities of anyone.
हर बच्चे में क्या देखा?
What did they see in every child?
गुण ही गुण देखे.
They saw only their virtues.
अवगुणों का कभी बखान नहीं किया.
They never described about their bad qualities.
अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखा.
They did not see the bad qualities even while looking at it.
और leftist बोले?
And what about the leftist hands?
महाकाल और महाकाली.
महाकाल and महाकाली.
उनका क्या पार्ट है?
What is their role?
है?
Hmm?
उनका पार्ट है.
Their role is that
तीसरे नेत्र से गुणों को भी देखते हैं और अवगुणों को भी देखते हैं.
Their role is that they see the virtues as well as the bad qualities through the third eye.
परंतु जब अवगुण दर्शन किए जाते हैं.
But when the bad qualities are seen,
तो उन अवगुणों के संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा?
Then will one get colored by the company of those bad qualities or not?
नहीं लगेगा.
Someone said something. Will they not get colored? Hmm?
काम कठिन हो जाएगा या सहज हो जाएगा?
Will the task become difficult or easy?
कोई के अवगुणों का दर्शन किया जाए.
If one looks at bad qualities of someone,
और कोई ऐसा पुरुषार्थी है जो गुणों का ही दर्शन करे.
And if someone is such an effort maker that he looks into only virtues,
अवगुणों को देखते हुए न देखे.
He does not see the bad qualities even while looking at them.
तो फायदे में कौन रहेगा?
So who will be benefited?
गुणों का देखने वाले के लिए सहज हो जाएगा. जो करेगा सो पाएगा.
For the one who looks at virtues, it will be easy. The one who does will get.
ऊपर वाला आया हुआ है.
The one who resides above, God has come.
वो जाने उसका काम जाने.
He knows his task.
तो अवगुण दर्शन करने से.
So by looking at the bad qualities,
कुछ न कुछ लेपछेप लगता जरूर.
One certainly gets affected by it to some extent or the other.
Leftist के रूप में दो आत्माएं मददगार.
So two souls are the cooperatives in the form of leftist.
काम कठिन है.
The task is difficult.
वे भी मददगार तो है.
Even then, they are cooperative.
तो चार भुजाएं मददगार के रूप में दिखाई गई हैं.
So the four arms have been shown in the form of cooperatives.
ईश्वरीय कार्य में ये चार भुजाएं मददगार बनती हैं.
These four arms become cooperative in the godly task.
वो भक्ति मार्ग में चतुर्भुज रूप दिखाया है, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं.
The four armed form, which has been shown in the path of devotion, doesn't have any meaning.
यहाँ तो बाप बैठ समझाते.
The father sits and explains here.
क्योंकि हमें पति से पावन बनना है बाप द्वारा.
Because we have to become pure from impure through the father.
तो पति से पावन सूक्ष्म बतन में बनेंगे क्या?
So will we become pure from impure in the subtle world?
सूक्ष्म बतन की तो बात ही नहीं.
It is not a matter of subtle world at all.
आत्मा को प्योर बनना है.
The soul has to become pure.
प्योर बन करके हम चले जाएंगे अपने धाम.
After becoming pure, we will go back to our abode.
आत्मा पवित्रता की स्टेज पर है, संपूर्ण स्टेज को पकड़ेगी.
When a soul achieves a pure stage, that is complete stage,
तो उस देह में धरी रह जाएगी या ऊपर उड़ेगी?
Then will it remain bound within this body or will it fly up?
देह में रहना ही अच्छा नहीं लगेगा.
It will not feel good to remain in the body at all.
Upram ho jayegi.
It will become detached. Upram.
Atma to rehti hi nirakari duniya mein.
Of course, souls live in the incorporeal world.
Yahan is duniya mein hote hain sakari.
There are corporeal people in this world.
Baaki sukshm matan ki koi mukhya kahani nahi hai.
As regards the rest, there is no main story of the subtle world.
सूक्ष्म बतन के जो फरिश्ते हैं,
the angels of the subtle world,
वो देवता धर्म में नहीं गाए जाते,
are not praised in the deity religion.
फरिश्तों का गायन कौन से धर्मों में होता है?
In which religion are angels praised? Someone said, Islam.
क्रिश्चियंस और मुसलमानों में फरिश्तों का गायन होता है.
Angels are praised among Christians and Muslims.
वो देवताओं को नहीं मानते.
They don't believe in deities.
क्यों नहीं मानते?
Why don't they believe? Someone said they don't recognize corporeal.
क्योंकि जो भी क्रिश्चियन या मुसलमान दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं.
It is because the Christians and the Muslims who get converted into other religions,
उनके 84 जन्म होते ही नहीं.
Do not take 84 births at all.
जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए ही नहीं.
The ones who didn't take complete 84 births at all,
वो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से पढ़ाई पढ़ करके देवता नहीं बन पाते.
They cannot study directly from the Supreme Father, Supreme Soul and become deities.
क्या बन जाते?
What do they become?
स्थूल शरीर छोड़ करके क्या बन जाते?
After leaving the physical body, what do they become?
सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं.
They become subtle bodied beings.
तो उनके धर्मों में फरिश्तों का गायन है.
So there is the praise of angels in their religions.
देवताओं का गायन नहीं है.
There is no praise of deities.
सूक्ष्म बतन का राज भी अभी बाप समझाते हैं.
Now the father explains the secret of subtle world as well.
जबकि मुरलियों में बताते हैं सूक्ष्म बतन क्या है, कुछ भी नहीं.
Whereas it is told in Murli, what is the subtle world? It is nothing.
तो क्या राज हुआ?
So what is the secret?
सूक्ष्म बतन.
The subtle world.
अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्थिति.
Means the subtle stage of the mind and intellect.
ऐसी सूक्ष्म स्टेज.
It is such a subtle stage.
जहाँ आत्मा साकार देह.
Where the soul forgets the corporeal body.
देह के संबंध.
The relations of the body.
और देह के पदार्थों को भूल जाती है.
And the materials related to the body.
इसे कहते हैं आकारी स्टेज.
That is called a subtle stage.
ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहती है.
It remains in thinking and churning of knowledge.
नई दुनिया की प्लानिंग में रहती है.
It remains in the planning of new world.
अथवा ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहती है.
Or the intellect remains in the godly service.
ये साकार दुनिया और उसके धंधे धोरी से बुद्धि उपराम बन जाती है.
The intellect becomes detached from this corporeal world and its occupations.
है तो नंबर बार.
They are in fact number wise.
मूल वतन फिर सूक्ष्म वतन फिर सूक्ष्म स्थूल वतन.
The supreme abode, then the subtle world, then the physical world.
सबसे ऊंची स्टेज है मूल वतन की.
The highest stage is of the supreme abode.
परंतु मूल वतन में कोई डायरेक्ट जा ही नहीं सकता.
But no one can directly go to the supreme abode.
जब तक सूक्ष्म स्टेज न धारण करे मनन चिंतन मंथन की.
Until he achieves a subtle stage of thinking and churning.
तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं.
Whoever comes, first of all.
तो बाप का परिचय देना चाहिए.
One should give them the introduction of the father.
कि बाप मूल वतन का रहने वाला है.
That the father is a resident of the supreme abode.
और सदा ही मूल वतनवासी है.
And he always resides in the supreme abode.
इस धरती पर आते हैं.
He comes in this world.
साकार दुनिया में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं.
Comes in the corporeal world, comes in a sinful world, comes in a sinful body.
पतितों के बीच में आते हैं.
And comes among sinful ones.
तो भी मूल वतन की निराकारी स्टेज में रहते हैं.
Even so, he remains in an incorporeal stage of the supreme abode.
वो बाप है.
He is the father.
भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा हे भगवान कहते हैं ना.
Even in the path of devotion, they say, Baba, Baba, O God, don't they?
परंतु सिर्फ जानते नहीं.
But they only don't recognize.
हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः.
They always say, Shiv Paramatmai Namo. That is, I bow to Shiv, the Supreme Soul.
Shiva Devata kabhi nahi kahenge?
They never say Shiv, the deity.
Kya?
What?
Shiva Devata nahi kahenge.
They will not say Shiv, the deity.
Lekin Shankar ko? Shankar ko Devata kahenge.
But what about Shankar? They will say Shankar is a deity.
Iska matlab?
It means that
Shiva भगवान है.
शिव इज गॉड.
और शंकर देवता है.
एंड शंकर इज अ डेटी.
ब्रह्मा देवताई नमः कहेंगे.
दे से ब्रह्मा देवताई नमः. दैट इज आई बाउ टू ब्रह्मा द डेटी.
शिव को परमात्मा ही कहते हैं.
शिव इज कॉल्ड एज द सुप्रीम सोल.
परम पिता परमात्मा भी कहते
हैं. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल.
फिर उनको सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है.
देन लिटिल इंडियन इज ही कॉल्ड एज ओमनीप्रेजेंट.
सर्वव्यापी कब कहे.
वेन शुड ही बी कॉल्ड ओमनीप्रेजेंट.
सर्वव्यापी तब कहा जाए.
ही विल बी कॉल्ड ओमनीप्रेजेंट
जब हरेक आत्मा में प्रवेश करे.
वेन ही एंटर्स ईच एंड एवरी सोल.
लेकिन हरेक आत्मा में प्रवेश करते हैं.
बट Does he enter each and every soul?
या सिर्फ आत्माओं के बीच जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी है वो सब परमात्मा पाठधारी में प्रवेश करते हैं.
और does he enter that supreme soul who performs the supreme role of a hero among all souls?
एक में ही प्रवेश करते हैं.
He enters only one.
वो एक व्यापी बन करके आता है.
He comes in only one. एक व्यापी
सर्वव्यापी बनकर नहीं आता है.
ही डजंट कम एज ओमनी प्रेजेंट.
पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य उनको करना है ना.
ही हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सिनफुल इनटू प्योर हैजंट ही.
तो सब में प्रवेश करके अगर पतितों को पावन बनावे.
इफ ही विल एंटर एवरीबॉडी एंड स्टार्ट मेकिंग द सिनफुल वंस इनटू प्योर वंस.
तो पतिति के पतिति ही रह जाएंगे.
देन विल दे रिमेन सिनफुल इटसेल्फ,
या पावन बन जाएंगे,
और विल दे बिकम प्योर,
सब एक जैसे पुरुषार्थी होंगे क्या?
विल ऑल एफर्ट मेकर्स बी अलाइक?
नहीं.
नो.
ऊंच से ऊंच बाप आते हैं.
द हाइएस्ट ऑन हाई फादर कम्स,
तो जरूर ऊंच से ऊंच में प्रवेश करते होंगे.
And then certainly he would be entering only the highest on high.
जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं.
Just like Abraham, Buddha, Christ come.
तो ऊंचे से ऊंचे देवताओं में प्रवेश करते हैं.
Do they enter the highest on high deities?
नंबर बार ऊंचे देवताओं में प्रवेश करते हैं.
Do they enter the highest deities who are number wise ones?
या कलयुग के अंत में उतरने वाली देवात्मा में प्रवेश करते हैं.
Or do they enter the deity souls who descend at the end of Kaliyug, at this Iron Age?
Number wise devatma mein pravesh karte.
They enter the number wise deity souls.
Aise.
Similarly,
wo dharm pitaye to hai number wise unche.
Those religious fathers are number wise high.
Unko unche se unche nahi kahenge.
They will not be called as the highest on high.
Parantu ye to hai unche se unche baap.
But this is the highest on high father.
Aisa unchite unche baap.
Such a highest on high father.
Zarur unchite unche paatdhari mein pravesh karega.
Will certainly enter in the highest on high actor.
Tab to patiton ko pavan banane ka kartavya karenge.
Only then he can perform the duty of making the sinful into pure ones.
To patiton ko pavan banane ke liye क्या ठिक्कर भीतर में आवेंगे?
सो विल ही कम इन मर्ड एंड वॉल फॉर मेकिंग सिनफुल इनटू प्योर वंस?
ठिक्कर में आवे.
इफ ही कम्स इन अ लंप ऑफ मर्ड,
तो जिनका संग करेंगे वो भी ठिक्कर बुद्धि बन जाएंगे.
देन द वंस हुज कंपनी ही विल कीप, दे विल ऑल्सो बिकम ऑफ मर्ड लाइक इंटेलेक्ट.
पत्थर बुद्धि में आवे.
If he comes in a stone-like intellect,
तो जिनका संग करेंगे वो भी पत्थर बुद्धि बन जाएंगे.
Then the ones whose company he will keep, they will also become of a stone-like intellect.
सर्वव्यापी के ज्ञान को घोर अंधियारा कहा जाता है.
This knowledge of omnipresence is called as terrible darkness.
परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है क्या?
But even this is predetermined in the drama. What?
Sarvyapi ka gyan phail jana.
The spread of the knowledge of omnipresence.
Kaun se yugon mein phailta hai?
In which age does it spread?
Dwapar kaliyug mein ye gyan phail jata hai ki Paramatma sarvyapi.
This knowledge spreads in the copper and the iron age that the supreme soul is omnipresent.
Shooting kahan hoti hai?
Where does the shooting take place?
कैसे?
Someone said in the conference age. How?
यहाँ तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहता परमात्मा सर्वव्यापी है.
No ब्रह्मा कुमार कुमारी over here says that the supreme soul is omnipresent.
है?
Someone said they sit and give drishti.
कहते नहीं है लेकिन practical act ऐसी करते हैं.
They do not say so. But they perform such an action practically,
जिससे लोगों की बुद्धि में बैठता है कि यही परमात्मा के रूप है.
Due to which it sits in the intellect of the people that these are forms of the supreme soul.
कुछ भी समझते नहीं है.
They do not understand anything.
बाप आकर के समझाते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत.
The father comes and explains यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत.
जब जब ऐसी भारत में ग्लानी हो जाती है परम पिता परमात्मा की.
Whenever such a defamation of the supreme father, supreme soul takes place in Bharat,
कि भगवान ठिक्कर भीतर कण कण में व्यापक है.
That God is pervasive in mud and wall and in every particle.
तब ही मैं आता हूँ.
I come at that time.
शास्त्रों में तो संस्कृत में लिख दिया है.
It has been written in Sanskrit in scriptures.
शास्त्रों में जो लिखा है.
वट एवर हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स,
वो कौन सी भाषा में लिख दी है?
इन विच लैंग्वेज हैज इट बीन रिटन?
संस्कृत में लिख दी है.
समवेयर सेड इन संस्कृत, It has been written in Sanskrit.
और शास्त्र कहाँ की यादगार है?
Of where are the scriptures a memorial?
भक्ति मार्ग की ही यादगार है.
They are a memorial of the path of devotion itself.
जो भक्ति मार्ग में यादगारें बनी हुई है.
The memorials which have been made in the path of devotion.
उनका foundation कहाँ पड़ता है?
Where is their foundation laid?
संघ अभी हुए foundation पड़ता है.
The foundation is laid in the confluence age.
संस्कृत माना क्या?
What does Sanskrit mean?
संस्कृत का अर्थ ही है सुधरा हुआ.
The meaning of Sanskrit is the one which is reformed.
ज्ञान जब समझ में आने लगे तो सुधरा हुआ कहेंगे.
Will it be called as the reformed knowledge when one starts understanding it?
यह ज्ञान ऐसा जो समझ में ही ना आए उसको सुधरा हुआ कहेंगे.
Or will the knowledge which one doesn't understand at all be called as the reformed one?
संस्कृत में श्लोक पढ़ करके सुनाए देते हैं.
Someone reads out a shlok in Sanskrit, that is a Sanskrit couplet.
Sabha ko samajh mein kuch bhi nahi aata hai.
The gathering doesn't understand anything.
To usko gyan kahenge sabha ke liye.
So will it be called as knowledge for the gathering?
Ya bhains ke aage bin bajana.
Or is it like to cast pearls before swine?
Agyan kahenge.
Will it be called as ignorance?
To agyan ki baat ho gayi.
That is a matter of ignorance.
ज्ञान वो जो समझ देवे.
Knowledge is the one which gives understanding.
ब्रह्मा के द्वारा जो भी सुनाया.
Whatever was narrated through Brahma.
उसे संस्कृत कहे या वेदवाणी कहे.
Will that be called as Sanskrit or Vedvani?
वो वेदवाणी थी.
That was Vedvani.
वेदवाणी वैदिक भाषा में बनाई गई है भक्ति मार्ग में.
वेदवाणी हैज बीन रिटन इन द वैदिक लैंग्वेज इन द पाथ ऑफ डिवोशन.
संस्कृत बाद में तैयार हुई.
संस्कृत वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टरवर्ड्स.
ऐसे ही
सिमिलरली
ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियाँ चलाई गई.
द मुरलीज विच वर नरेटेड थ्रू ब्रह्मा.
मुख से जो ज्ञान निकला वो वेदवाणी है.
द नॉलेज दैट इमर्ज फ्रॉम हिज माउथ is Vedvani.
उसका अर्थ कोई समझते नहीं.
Nobody understands its meaning.
बाद में संस्कृत भाषा में ढेर सारी बातें क्लियर की गई.
Many matters have been clarified later on in the Sanskrit language.
तो बाप आकर के इनका अर्थ समझाते.
So father comes and explains its meaning.
गीता में जो लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य.
इट हैज बीन रिटन इन गीता यदा यदा हि धर्मस्य.
धर्म की जब ग्लानी होती है.
व्हेन डिफेमेशन ऑफ रिलीजन टेक्स प्लेस.
तो कौन से धर्म की ग्लानी होती है?
सो द डिफेमेशन ऑफ विच रिलीजन टेक्स प्लेस.
और दुनिया में जो भी धर्म है वो तो धर्म के नाम पर पहले से ही अधर्म है.
Whichever other religions are there in the world are already irreligiousness in the name of religion.
वो धर्म है ही नहीं.
They are not religions at all.
वास्तव में जो देवी देवता सनातन धर्म है उसकी ही ग्लानी होती है.
Actually, the ancient deity religion, देवी देवता सनातन धर्म, gets defamed.
लिख दिया है संभवामी योगे योगे.
It has been written. संभवामी युगे युगे.
मैं हर युग में आता हूँ.
I come in every युग.
फिर लिख दिया है सर्वव्यापी है.
Then it has been written he is omnipresent.
वो लोग इस श्लोक सुना करके फिर क्या अर्थ सुनाते हैं?
What meaning do those people give after narrating the श्लोक?
ये भी तुम बच्चों को देखना चाहिए.
You children should observe that as well.
वहाँ जाकर के बोलना चाहिए हम इनका अर्थ नहीं समझते हैं.
You have to go there and say that we do not understand its meaning.
तो वो फट से सुना देंगे.
So they will narrate immediately.
वो कोई ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि ये कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं.
Little indeed, will they understand that these are some Brahma Kumar Kumaris?
करके तुम्हारा सफेद ड्रेस है.
Although you have a white dress.
परंतु तुम्हारे पर कोई ब्रह्मा कुमारी का छापा थोड़े ही लगा हुआ है.
But there is no stamp of Brahma Kumari affixed on you.
कोई भी पुरुष जाए पूछे तो झट सुना देंगे.
If any male goes and asks, then they will narrate immediately.
वो लोग क्या अर्थ करते हैं वो मालूम पड़ने से फिर बाबा इसका अर्थ बताएंगे.
If you come to know what meaning they give, then Baba will explain its meaning.
Baba को समाचार देना चाहिए.
One should give the report to Baba.
परंतु ऐसा कोई बच्चा नहीं है.
But no such child is there.
ये चिन्मयानंद आदि जाते हैं.
This Chinmayanand and so on go.
सभी तरफ जाते हैं.
They go everywhere.
कहाँ भी जाए सुनाया आना चाहिए.
Wherever you go, you should listen to them and come.
वो तो पूछ भी सकते हैं.
You can also ask.
इनका अर्थ तो हमने समझा ही नहीं.
We didn't at all understand its meaning.
देखो वो क्या सुनाते.
See what they narrate.
बाकी इतने जो सब चित्र हैं.
All the remaining pictures that are there.
वो तो डिटेल में समझाने के.
Are for explaining in detail.
इतना था ज्ञान सुनाते हैं.
Baba explains such immeasurable knowledge.
सागर करके मस बनाओ, स्याही बनाओ.
Make the ocean into ink.
तो भी अंत नहीं है.
Even then, it doesn't have an end.
और फिर यहाँ सेकंड की बात भी सुनाई जाती.
Then the matter of a second is also narrated here.
सिर्फ बाप का परिचय देना है.
You have to just give the introduction of the father.
वो एक ही बाप है जो पतित पावन बेहद का बाप है.
He is the only one father who is the purifier of the sinful ones and the unlimited father.
और वो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है.
And that father himself is the creator of heaven.
और जो भी मनुष्य मात्र है बाप का टाइटल तो मिलता है.
All the other human beings do get the title of father.
बाप तो बनते हैं.
They indeed become a father.
परंतु
टाइटल
स्वर्ग की स्थापना कोई भी नहीं करते.
But nobody establishes heaven.
क्यों नहीं करते.
Why don't they?
क्योंकि कोई भी बाप नहीं है दुनिया में. बाप तो बहुत हुए हैं.
Because no one is the father. Many have indeed become fathers in the world.
Ibrahim, Buddha, Christ, Guru Nanak, bade se bade baap ki category mein hue.
Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak became fathers of the highest category.
150-200 crore Christians Christ ko baap maane baithe.
1.5 billion to 2 billion Christians have considered Christ as their father.
परंतु उन बापों में से कोई भी बाप ऐसा नहीं है.
बट देयर इज नो फादर अमंग दोज फादर्स
जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला हो.
हु ऑलवेज रिमेन्स इन द सेल्फ स्टेज.
इसलिए
फॉर दिस रीजन
वो कोई भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते.
नन ऑफ देम कैन एस्टैब्लिश हेवन.
ये एक ही बाप है.
दिस इज द ओनली फादर
जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने के कारण सदाशिव कहा जाता है.
Who is called as ever benevolent because he always remains in the self stage.
और वो ही स्वर्ग की स्थापना करता है.
And he alone establishes heaven.
हम उनके बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं.
We are his children, brothers among each other.